मेरे आत्मीय युवा मित्रों नमस्कार। आज 9 मई 2019 है और आज के इस afeis.com के डेली ऑडियो लेक्चर में मैं डॉक्टर विजय अग्रवाल आप सभी का हार्दिक रूप से स्वागत करता हूं। दोस्तों आज आइए दूसरी सारी बातों को हटा देते हैं, रजिस्ट्रेशन की बात को हटा देते हैं, अखबारों में, रेडियो में, दूरदर्शन में, चैनल्स में क्या खबरें हैं उनको भी हटा देते हैं और यहां तक कि ईमेल को भी हटा देते हैं। आज हम विशुद्ध रूप से प्री एग्जामिनेशन के एक बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दे पर बात करते हैं ताकि आपका दिमाग बिल्कुल एकदम नए स्लेट की तरह साफ हो और उसमें अब जो मैं आपको बात बताने जा रहा हूं वे लगातार दर्ज होती चली जाएं और मोती की तरह चमकती रहें, क्योंकि जिस विषय पर मैं मुख्य विषय के तहत आपसे बात करने जा रहा हूं वो इनफैक्ट आपके प्री एग्जामिनेशन की सफलता से काफी कुछ जुड़ा हुआ है और आप जानते हैं कि कुछ दिनों के बाद ही आपको प्री एग्जामिनेशन में अपीयर होना है और उसके लिए केवल 3 सप्ताह ही बच गए हैं। हो सकता है, मुझे ऐसा लगता है कि मेरी यह बातें आपको सफल बनाने में थोड़ी सी मदद कर सकें। तो दोस्तों आज के मुख्य विषय के तहत या कह लीजिए एकमात्र विषय के तहत मैं आपसे इस विषय पर बात करने जा रहा हूं कि आप टेस्ट सीरीज का लाभ कैसे उठा सकते हैं। टेस्ट सीरीज आजकल इसकी बहुत चर्चा है और सही चर्चा भी है, ऐसा नहीं कि गलत चर्चा है। हम लोगों के समय में ऐसी सुविधाएं उपलब्ध नहीं थी। हम लोगों के समय की जब मैं बात कर रहा हूं तो 1980 की बात कर रहा हूं, उसके बाद तो दुनिया बहुत बदल गई है। देखिए जो प्री एग्जामिनेशन में जो आपके से जो प्रश्न पूछे जाते हैं, मैं फर्स्ट पेपर पर अपनी बात केंद्रित करना चाहूंगा, वो बहुत उलझाव वाले होते हैं। इसका अनुभव आपको है और अगर आप पहली बार अपीयर हो रहे हो तो आपको चाहिए कि आप अनसॉल्व पेपर इसके देखें तो आपको यकीन हो जाएगा कि सच में जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो अपने आप में ही कितने उलझाव वाले हैं। मैं यहां उनके लेवल की बात नहीं कर रहा हूं कि वो किस लेवल के नॉलेज को टेस्ट करना चाह रहे हैं, लेवल चाहे जो कुछ भी हो, मैं तो इसकी बात कर रहा हूं कि उसके बारे में वो पूछते कैसे हैं। एक स्टेटमेंट दे देंगे, इसके बाद उसके बारे में फिर 4 विकल्प दे देंगे और पता लगा कि उन 4 विकल्पों के बाद में फिर से समूह के विकल्प दे देंगे, यानी कि ए में दे देंगे 1, 3, 4, फिर बी में देंगे 1, 2, फिर इस तरह से, मतलब आपको ऐसी भूल भुलैया में वो डाल देते हैं कि आपको समझ में नहीं आता कि यार इसने पूछा क्या था, ये जानना क्या चाह रहा है, मैं क्या जान रहा हूं और मैं कहां से उत्तर ढूंढूं। दोस्तों ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं कि आपके दिमाग में ये चीज बहुत क्लियर होनी चाहिए कि नो डाउट कि प्री एग्जामिनेशन में जो आपकी सफलता होगी उसका बहुत बड़ा श्रेय आपकी प्रिपरेशन को है। प्रिपरेशन को है का मतलब ये है कि आपने कितने अच्छे तरीके से जो आपके विषय होते हैं उन्हें पढ़ा है बहुत ध्यान के साथ, केवल पढ़ा ही नहीं है, उन्हें बहुत अच्छे तरीके से समझा है, कुछ जो बहुत अच्छे उसके फैक्ट्स होते हैं उन कुछ आप कह लीजिए कि रट रट करके अपने दिमाग में बिल्कुल बसा लिया है, करेंट अफेयर्स से आपका कितना अच्छा एसोसिएशन बना रहा है, ये सारी बातें तो मायने रखेंगी ही, इसके बिना तो कुछ बात बननी ही नहीं है। लेकिन यही सब कुछ नहीं है। अगर आप सोचेंगे कि आपकी प्रिपरेशन बहुत अच्छी है और यही एकमात्र आपकी सफलता का राज हो सकता है तो मुझे लगता है कि आप थोड़ी सी चूक कर रहे हैं, थोड़ी सी भूल कर रहे हैं। आपकी इस सफलता में एक बहुत बड़ा श्रेय इस बात को होगा कि आपने जो क्वेश्चन पेपर का जो स्वरूप है उसके अनुकूल अपने दिमाग को कितना ढाला है। यानी कि ये जो एग्जामिनेशन है, प्री एग्जामिनेशन, एक प्रकार से कहीं ना कहीं आपका साइकोलॉजिकल टेस्ट भी है। साइकोलॉजिकल टेस्ट इस मायने में, जैसे मान लीजिए कि आप एक बाइक पर बैठे हुए हैं लेकिन जो आपका रास्ता है वो बहुत आसान रास्ता नहीं है, बहुत सकरा रास्ता है, सकरा ही रास्ता नहीं है बल्कि बहुत घुमावदार रास्ता है, घुमाव भी सामान्य नहीं है, बहुत तीखे घुमाव है और घुमाव इस तरीके की है कि दोनों ओर जब देखते हैं आप तो बहुत गहरी खाइयां दिखाई देती हैं, देखने से ही डर लगता है। तो वो देखना चाहता है कि आप इन भय के बावजूद, इन परेशानियों के बावजूद किस तरीके से अपनी बाइक को सेफली ड्राइव करके मंजिल तक पहुंचा सकते हैं, यानी कि यह एक मनोवैज्ञानिक परीक्षण भी है। वो देखना चाहते हैं कि आपके दिमाग में तथ्य कितने स्पष्ट रूप से मौजूद रहते हैं। वो देखना चाहते हैं कि आपको भ्रमित करने के लिए, कंफ्यूज्ड करने के लिए कितने ज्यादा जानकारियों की जरूरत होगी, इसके बावजूद आप कंफ्यूज्ड होते हैं या नहीं होते हैं। वो देखना ये चाहते हैं कि अगर आपको बहुत जद्दोजहद की स्थिति में फंसा दिया जाए तो आपका दिमाग उसमें से सही रास्ते को ढूंढ सकता है या नहीं ढूंढ सकता है, यह भी जानना चाहते हैं। और ये बात अलग है कि इन सबको जानने के लिए उन्हें नॉलेज का सहारा लेना पड़ता है, जिसे आप कहते हैं जनरल स्टडीज। तो दोस्तों, आपका जो दिमाग है वह उसके अनुकूल ढल सके, उन चुनौतियों के अनुकूल अपने आप को वह उन जटिलताओं में फंसा करके या डाल करके सहज महसूस कर सके, वह उन जटिलताओं में उलझ करके परेशान न हो, क्योंकि एग्जामिनेशन हॉल में ये सारी चीजें होती हैं, इसीलिए सजेस्ट किया जाता है कि आप कुछ टेस्ट सीरीज सॉल्व करें। एटलीस्ट मुझे लगता है कि 15 टेस्ट सीरीज तो आपको सॉल्व करने चाहिए ही, इसलिए चूंकि 3 सप्ताह का समय अभी बचा है, यानी अगर आप एक दिन में एक टेस्ट सीरीज भी शामिल सॉल्व करते हैं तो इतने दिनों में आप बड़े आराम से कर लेंगे, इसीलिए मैंने आज के दिन को इसके लिए चुना है। लेकिन मित्रों, केवल टेस्ट सीरीज सॉल्व कर लेना ही इंपॉर्टेंट नहीं है, आपको मालूम होना चाहिए कि इन्हें आपको सॉल्व कैसे करना है। तो उसके बारे में मैं आपको कुछ बातें बताने जा रहा हूं, राइट। अब मैं टू द पॉइंट बात करूं तो शायद आपके ज्यादा अच्छे से समझ में आएगी। दोस्तों, जैसे कि मैंने शुरू में कहा, आपको एक्लिमटाइज करना है, यानी कि अपने दिमाग को एग्जामिनेशन हॉल में जो क्वेश्चन पेपर आ रहा है उसके अनुकूल बनाना है। बनाते हैं ना, जैसे अंतरिक्ष में जाने वाले व्यक्ति को ऐसा नहीं है कि आप सीधे बैठाएंगे और अंतरिक्ष में भेज देंगे, अंतरिक्ष यान में नहीं, पहले उसके लिए प्रैक्टिस कराना पड़ता है कि वो वहां जाए तो वहां का जो वातावरण है उसमें फिट बैठ सके। यही आपको टेस्ट सीरीज सॉल्व करते समय करना है, यही इसका मेन पर्पज भी है। इसका मेन पर्पज आप ये मत समझिए कि आपको अपने नॉलेज को इन्हेंस करना है। अगर आप उस दृष्टि से सॉल्व करने की कोशिश करेंगे तो मुझे लगता है कि आप टेस्ट सीरीज के साथ न्याय नहीं कर रहे हैं, मतलब ये मेरी पर्सनल राय है और मुझे नहीं लगता है कि मेरी ये पर्सनल राय बहुत ज्यादा गलत होगी। कितना नॉलेज आप गेन कर लेंगे? आपने अभी तक पढ़ाई की है, इतने सारे कंटेंट देखे हैं, इतने सारे नोट्स बनाए हैं, विषयों को पढ़ा है, अगर उससे आपका नॉलेज कंप्लीट नहीं होता है तो इस टेस्ट सीरीज से नहीं होना है। टेस्ट सीरीज में हो सकता है कि कुछ फैक्ट्स आपको बहुत अच्छे मिल जाए तो बेहतर होगा कि आप उन्हें अलग से नोट कर लें, लेकिन टेस्ट सीरीज को इसलिए आप मत करें सॉल्व कि मेरे नॉलेज में वृद्धि होगी, ये आपके दिमाग में क्लियर होनी चाहिए। क्योंकि जब आप नॉलेज को लेकर के चलेंगे तो फिर मूल उद्देश्य आपका छूट जाएगा, और आपका मूल उद्देश्य है कि मुझे अपने दिमाग को इस टेस्ट सीरीज की जो प्रवृत्ति है, जो चरित्र है, उसके अनुकूल ढालना है। अनुकूल ढालना है इस रूप में कि जब मैं एग्जामिनेशन हॉल में बैठ करके क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर रहा हूंगा तो वह क्वेश्चन पेपर मुझे अजीब सा न लगे, अजनबी सा न लगे, टेढ़ा मेढ़ा और उलझाओ से भरा हुआ न लगे, कुछ ऐसा लगे कि मैं तो इसे पहले से जानता हूं, मैं इससे परिचित हूं। तो जैसे ही आपको लगेगा कि नहीं, मैं तो इससे परिचित हूं, व्यावहारिक जीवन में भी आपने देखा होगा, तो आप सहज हो जाते हैं, तो आप सहज हो जाएंगे। और सहज हो जाने का इतना जबरदस्त पॉजिटिव इंपैक्ट आपके एग्जामिनेशन पर पड़ेगा कि मैं बता नहीं सकता। ये कह लीजिए कि यही सबसे बड़ा चैलेंज है कि एग्जामिनेशन हॉल में आप अपने आप को कैसे सहज रख पाते हैं, राइट। तो दोस्तों, पहली बात तो ये है, याद रखिए कि आप जैसे ही बैठें पहले आप 5 क्वेश्चन पेपर अलग तरीके से सॉल्व कीजिए। वो अलग तरीके से क्या होगा, आप टाइम को किनारे कर दीजिए कि आपको 2 घंटे में इसे सॉल्व करना है, नहीं, आप बड़े इत्मीनान के साथ उनके क्वेश्चंस को पढ़िए और उस क्वेश्चंस की जो जटिलताएं हैं और उसका जो स्वरूप है उसे समझने की कोशिश करें। बस आपका पूरा ध्यान इस पर केंद्रित होना चाहिए कि मैं इन क्वेश्चंस की जो कॉम्प्लेक्सिटी है, जो जटिलताएं हैं, जो भूल भुलैया है, जो घुमाव है, उनको समझ सकूं। केवल प्रश्न पूछने की ही जटिलताएं नहीं, बल्कि जो विकल्प दिए गए हैं उनकी भी जटिलताएं। आपको कम से कम 5 टेस्ट सीरीज इसी में हल करने चाहिए, इसी रूप में हल करने चाहिए। इसके लिए भले ही आपको रोजाना 5-5, 6-6 घंटे क्यों न देने पड़े, आप मान करके चलिए कि आप सही काम कर रहे हैं। यह मत समझिएगा कि आप अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं, क्योंकि स्टूडेंट ऐसा समझने लगते हैं। तो जब आप पांच एक पेपर इस तरीके से सॉल्व कर लेंगे तो आप देखेंगे, आप अलग तरह का महसूस करेंगे, ये आप खुद अनुभव करेंगे, मेरे बताने की बात नहीं है। आपका दिमाग थोड़ा सा रिदमिक हो जाएगा, लयात्मक हो जाएगा। अब जब आप छठवां टेस्ट पेपर पढ़ेंगे, देखेंगे, तो आप पाएंगे कि वो आपको थोड़ा सा सरल सा लग रहा है, वो थोड़ा सा परिचित सा लग रहा है, आपके दिमाग पर दबाव और तनाव कम हो गए हैं। अब आपके पास अगर आप 15 सॉल्व करने का प्लान कर रहे हैं तो 10 क्वेश्चन पेपर बच गए हैं। मित्रों, इन 10 क्वेश्चन पेपर को आप बिल्कुल उसी पैटर्न पर सॉल्व कीजिए एज इफ मानो कि आप एग्जामिनेशन हॉल में बैठकर सॉल्व कर रहे हैं। यानी कि टाइम का ध्यान रखिए कि 2 घंटे में मुझे सॉल्व करना है, उसी गति से सॉल्व कीजिए जिस गति से आपको एग्जामिनेशन हॉल में सॉल्व करना होगा, वही स्पीड लीजिए। और जैसे ही आपका समय खत्म हो जाए तो अब ये नहीं कि मामला खत्म हो गया, नहीं, बकायदे इत्मीनान के साथ बैठिए और खुद का मूल्यांकन कीजिए कि जब आप सॉल्व कर रहे थे तो दिमागी परेशानियां किस किस तरह की थी, किस किस तरह के प्रश्नों में आप अटक जा रहे थे। कुछ प्रश्न ऐसे होंगे जो बड़े सरल थे लेकिन आप गलत कराए, कुछ प्रश्न ऐसे भी होंगे जो लग तो रहे थे कठिन लेकिन आप सही कराए। तो आप उनके कारणों की तलाश कीजिए कि ऐसा क्यों हुआ, इसको कैसे आप और आगे जाकर के बेहतर बना सकते हैं, उन चुनौतियों को कैसे इजी कर सकते हैं, उसके बारे में सोचिए। और बेहतर होगा कि उन पॉइंट्स को नोट कर लीजिए और नेक्स्ट डे फिर आप अगला टेस्ट सॉल्व करें और इस तरह से फिर उस दिन अपना मूल्यांकन करें। 10 दिन यानी कि 10 टेस्ट जो इस तरह के बच गए हैं, जब आप उनको इस तरीके से आगे बढ़ाते चले जाएंगे तो आप खुद इस बात का अनुभव करेंगे 15 टेस्ट के बाद कि आप कितना इजी हो गए हैं, आप कितने सहज हो गए हैं, अब आपके लिए चीजें उतनी कठिन नहीं रह जाएंगी। अब बात आएगी बट नेचुरल है कि लेवल की, कि आपकी तैयारी कैसी है। अगर तैयारी अच्छी भी होगी और ये मानसिक तैयारी बेहतर नहीं हुई मित्रों, तो आप देखेंगे कि आपसे बहुत सी गलतियां हो जाएंगी, आप स्पीड को कवर नहीं करेंगे, अनावश्यक रूप से आपको कुछ प्रश्न छोड़कर आने पड़ सकते हैं। और आप जानते हैं कि यहां तो 0.01% का भी बहुत महत्व है, सेम मार्क्स पाने वाले 100 स्टूडेंट्स से भी ज्यादा होते हैं। तो कितनी बड़ी चुनौती है, कितना नेक टू नेक फाइट है, इसे आप बहुत अच्छे से जानते हैं। और अगर वहां आप अपने संतुलन को बनाए रख सके तो आप ये मान करके चलिए कि आप आधी बाजी जीत चुके होंगे। तो दोस्तों, ये मैंने टेस्ट सीरीज सॉल्व करने के बारे में आप लोगों को कुछ निर्देश दिए हैं, कुछ गाइडलाइंस दी हैं। आप देखिए, अगर आपको मेरी बातें सूट करती हैं तो आप इनका इस्तेमाल कर सकते हैं, अदरवाइज तो आप अपने ढंग से कर ही रहे हैं। मेरी शुभकामनाएं आप सबके साथ हैं। और दोस्तों, इसी के साथ ही अब मैं आज के इस डेली ऑडियो लेक्चर को यहीं समाप्त करना चाहूंगा। नमस्कार।